سورہ 17 اسرائیل کی اولادیں بنی اسرائیل۔ اللہ کے نام سے سب سے مہربان سب سے رحم والے۔ سب سے باعظمت ہیں واحد جنہوں نے حاضر کیا ان کے بندے محمد کو رات کے درمیان مکے کے مقدس مسجد سے سب سے دور سجدے کی جگہ کو، جس کا ماحول ہم نے مبارک بنایا ہے، اسے ہماری کچھ نشانیوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ ہیں سننے والے دیکھنے والے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو دی آسمانی کتاب اور بنایا اسے ایک رہنمائی اسرائیل کی اولادوں کے لیے کہ تمہیں میرے سوائے کسی بت کو ایک رب اور مالک جیسا قائم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہیں نسلیں، ان میں سے جن کو ہم لے گئے نوح کے ساتھ، وہ تھا ایک قدردان بندہ۔ ہم نے خطاب کیا اسرائیل کی اولادوں کو آسمانی کتاب میں، تم کرو گے زمین پر بڑی برائی دگنا، تم طے کیے گئے ہو تکبر کی بڑی اونچائی میں گرنے کے لیے۔ جب پہلا موقع گزر جائے گا ہم بھیجیں گے تمہارے خلاف ہمارے بندوں کو جو رکھتے ہیں بڑی طاقت، اور وہ تمہارے گھروں پر حملہ کریں گے۔ یہ ہے ایک پیشن گوئی جو ضروری ہے گزرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیں گے تمہیں ایک موقع ان پر، اور مہیا کریں گے تمہیں بہت دولت اور اولادوں سے، ہم دیں گے تمہیں غلبہ۔ اگر تم نیک کاری والے کاموں کو کرو، تم نیک کاری والے کاموں کو کرتے ہو تمہارے خود کے اچھے کے لیے، لیکن اگر تم برائی کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو تمہارے خود کے نقصان کے لیے۔ اس طرح جب دوسرا موقع گزر جاتا ہے، وہ تمہیں شکست دیں گے اور داخل ہوں گے مسجد میں جیسا انہوں نے کیا پہلی دفعہ۔ وہ مٹا دیں گے سارے فائدوں کو جو تم نے حاصل کیا تھا۔ تمہارے رب برساتے ہیں تمہیں ان کی رحمت سے، لیکن اگر تم پلٹو خطا کی طرف، ہم جواب دیں گے عذاب کے ساتھ۔ ہم نے چنا ہے جہنم ایک آخری ٹھکانے جیسا کافروں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے اچھے راستے کی طرف، اور لاتا ہے خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو ایک نیک زندگی بسر کرتے ہیں، کہ وہ مستحق ہوئے ہیں ایک بڑے جزے کے۔ جہاں تک وہ جو کفر کرتے ہیں، اگلی زندگی میں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے ایک دردناک عذاب۔ انسان اکثر کوئی چیز کے لیے دعا کرتا ہے جو اسے نقصان دے سکتی ہے، سوچتے ہوئے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کچھ اچھے کے لیے۔ انسان ہے بے صبر۔ ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، ہم نے رات کو سیاہ اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم تلاش کر سکو اس میں تمہارے رب کی نعمتوں کو۔ اس کے علاوہ یہ قائم کرتا ہے تمہارے لیے ایک وقت بتانے والا نظام اور ذریعہ حساب کرنے کا۔ ہم اس طرح سمجھاتے ہیں ساری چیزیں تفصیل میں۔ ہم نے درج کر رکھا ہے ہر انسان کا مقدر۔ وہ بندہ ہے اس کے گردن سے۔ حشر کے دن پر ہم دیں گے اسے ایک آسمانی، حشر کے دن پر हम देंगे उसे एक आसानी से समझ सकने वाला दफ्तर। पढ़ो तुम्हारे खुद का दफ्तर, आज तुम काफ़ी हो तुम्हारे खुद के हिसाब लेने वाले जैसे। जो कोई हिदायत याफ्ता है हिदायत याफ्ता उसके खुद के अच्छे के लिए, और होता है जो कोई गुमराह करता है ऐसा उसके खुद के नुकसान के लिए। कोई गुनाहगार नहीं उठाएगा किसी और के गुनाहों को। हम कभी सज़ा नहीं देते बगैर पहले एक रसूल भेजते हुए। अगर हमें किसी कौम को फनाह करना हो, हम रहबरों को उसमें बड़ी खराबी करने देते हैं। जब वो मुस्तहिक होते हैं आज़ाब के, हम फनाह कर देते हैं उसे पूरी तरह। कई एक नस्ल हमने फनाह किया नूह के बाद। तुम्हारे रब हैं सबसे काबिल उनके बंदों के गुनाहों के साथ बर्ताव करने में। वो हैं सब कुछ जानने वाले देखने वाले। जो कोई चुनता है इस फना होती जिंदगी को उसकी अव्वलियत जैसा, हम जल्दी करेंगे उसके लिए जो हमने फैसला किया है उसको देने का। फिर हम हवाले करते हैं उसे जहन्नम को, जहां वो मुसीबत उठाता है हमेशा के लिए, जलील किया और हराया गया। जहां तक वो जो चुनते हैं अगली ज़िंदगी को उनकी अव्वलियत जैसा और नेककारी वाले काम करते हैं ईमान रखते हुए, उनकी कोशिशों की कद्र की जाएगी। उनमें से हर एक को हम मुहैया करते हैं, हम मुहैया करते हैं उन्हें और इन्हें तुम्हारे रब की नियामतों से। तुम्हारे रब की नियामतें हैं कभी न ख़त्म होने वाली। ध्यान दो हमने किस तरह कुछ लोगों को तरजीह दी दूसरों पर इस ज़िंदगी में। फ़र्कें अगली ज़िंदगी में हैं कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा अहम। तुम्हें किसी दूसरे खुदा को कायम नहीं करना चाहिए सिवाय अल्लाह के, ताकि तुम्हारा अंजाम जलील किया गया और बेइज्जत किया गया न हो। तुम्हारे रब ने फरमान किया है कि तुम्हें इबादत नहीं करनी चाहिए सिवाय उनके, और तुम्हारे वालिदैन की इज्जत की जानी चाहिए। जब तक एक या उनमें से दोनों रहें, तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए उफ ज़रा सा भी नाराज़गी का इशारा, ना ही तुम्हें उनको चिल्लाना चाहिए। तुम्हें उनसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए और नीचा करो उनके लिए खाकसारी और रहम दिली के बाजुओं को, और कहो मेरे रब रहम करिए उन पर इसलिए कि उन्होंने परवरिश की है मेरी बचपन से। तुम्हारे रब पूरी तरह वाकिफ है। तुम्हें देना चाहिए हक वाला खैरात रिश्तेदारों, ज़रूरतमंद, गरीब और अनजान मुसाफिर को, लेकिन न दो ज़्यादा अंधा धुंद। और शैतान है उसके रब का नाकद्रदान। अगर तुम्हें उनसे पलटना हो तब भी जब तुम पीछा करते हो तुम्हारे रब की रहमत, तुम्हें उनसे सबसे अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए। तुम्हें कंजूसी से तुम्हारे हाथ को तुम्हारे गर्दन से बंधा नहीं रखना चाहिए, ना ही तुम्हें बेवकूफ़ी से उसे खोलना चाहिए, ताकि तुम्हारा अंजाम न हो मलामत किया गया और रंजिदा। इसलिए कि तुम्हारे रब बढ़ाते हैं नियामत जिस किसी के लिए वो चुनते हैं, और कम करते हैं उसे। वो है पूरी तरह वाकिफ उनके मखलूकों से देखने वाले, तुम्हें तुम्हारी औलादों को कत्ल नहीं करना चाहिए गुर्बत की डर से। हम मुहैया करते हैं उनके लिए, इसके अलावा तुम्हारे लिए भी। उन्हें कत्ल करना है एक बहुत बड़ा जुर्म। तुम्हें जिना नहीं करना चाहिए, ये है एक बहुत बड़ा गुनाह और एक बुरी हरकत। तुम्हें किसी शख्स को कत्ल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने ज़िंदगी को मुकद्दस बनाया है सिवाय इंसाफ की राह में। अगर कोई मारा जाता है बेइंसाफी से, फिर हम देते हैं उसके वारिस को इख्तियार इंसाफ जारी करने का। इस तरह उसे हदों को पार नहीं करना चाहिए कत्ल का बदला लेने में उसकी मदद की जाएगी। तुम्हें यतीमों के पैसे को नहीं छूना चाहिए सिवाय उनके खुद के अच्छे के लिए। जब तक वो बलूगत को न पहुँचे, तुम्हें तुम्हारे वादों को पूरा करना चाहिए, इसलिए कि वादा है एक बड़ी जिम्मेदारी। तुम्हें पूरा नाप देना चाहिए जब तुम तिजारत करो और बराबरी से वज़न करो, ये बेहतर है और ज़्यादा नेककारी। तुम्हें कबूल नहीं करनी चाहिए कोई इत्तला जब तक तुम जांच न लो उसे खुद के लिए। मैंने दिया है तुम्हें सुनाई दिखाई और दिमाग, और तुम जिम्मेदार हो उनको इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हें गुरूर से ज़मीन पर नहीं चलना चाहिए, तुम ज़मीन के पार छेद नहीं कर सकते, ना ही तुम हो सकते हो पहाड़ों के बराबर ऊंचा। सारी बुरी हरकत मलामत की गई है तुम्हारे रब की तरफ से। ये है कुछ हिकमत इल्हाम किया गया तुमको तुम्हारे रब की तरफ से। तुम्हें अल्लाह के अलावा दूसरे खुदा को कायम नहीं करना चाहिए ताकि तुम खत्म ना हो जहन्नम में मलामत किए गए और शिकस्त दिए गए। क्या तुम्हारे रब ने दिए हैं तुम्हें बेटे जबकि देते हुए खुद को फरिश्ते बेटियों जैसे? तुम कैसे कह सकते हो ऐसी एक बेअदबी? हमने बयान किए हैं इस कुरान में सारे किस्म के मिसालें ताकि वो तवज्जो ले सकें, लेकिन वो सिर्फ बढ़ाता है उनकी नफ़रत। कहो अगर वहाँ होते कोई और खुदाएं उनके सिवाय जैसा वो दावा करते हैं, उन्होंने तख्त के मालिक को शिकस्त देने की कोशिश की होती। उनकी तारीफ हो, वो हैं कहीं बुलंद उनके बोलियों से। बढ़ाई कर रहे हैं उनकी सात आसमाने, ज़मीन और हर कोई उसमें। वहाँ कुछ नहीं है जो उनकी बड़ाई नहीं करते, लेकिन उनकी बड़ाई करना तुम नहीं समझते। वो हैं रहीम माफ़ करने वाले। जब तुम कुरान पढ़ते हो, हम आड़ रखते हैं तुम्हारे और उनके दरमियान जो ईमान नहीं रखते अगली ज़िंदगी में। हम ढाल रखते हैं उनके जहनों के आसपास, उन्हें उसे समझने से रोकने के लिए, और बहरापन उनके कानों में। और जब तुम नसीहत करते हो तुम्हारे रब की सिर्फ़ कुरान इस्तेमाल करते हुए, वो भाग जाते हैं नफरत में। हम हैं पूरी तरह वाकिफ उससे जो वो सुनते हैं जब वो तुम्हें सुनते हैं और जब वो साजिश करते हैं। खुफिया तौर पर काफिरें कहते हैं तुम एक दीवाने आदमी की पैरवी कर रहे हो। ध्यान दो वो किस तरह तुम्हें मुखातिब करते हैं और कैसे ये सबब बनता है उनका रास्ते से भटकने का। उन्होंने कहा इसके बाद कि हम हड्डियों और टुकड़ों में बदल जाएं, हम दोबारा जिलाए जाएंगे नए सिरे से। कहो अगर तुम बदल जाओ चट्टानों या लोहे में तब भी। अगर तुम बदल जाओ किसी किस्म के खलक में जिसे तुम नामुमकिन समझते हो तब भी। वो फिर कहेंगे कौन हमें लाएगा वापस। कहो जिस वाहिद ने पैदा किया तुम्हें पहले। फिर वो उनके सरों को हिलाएंगे और कहेंगे वो कब होगा। कहो वो हो सकता है तुम्हारे सोच से करीब। जिस दिन वो तुमको हाजिर करेंगे तुम जवाब दोगे उनकी तारीफ करते हुए और तुम तब एहसास करोगे कि तुम रहे हो इस जिंदगी में सिर्फ एक छोटे अरसे के लिए। कहो मेरे बंदों से एक दूसरे से सबसे अच्छे अंदाज में पेश आने के लिए, इसलिए कि शैतान हमेशा कोशिश करेगा उनके दरमियान दरार डालने का। यकीनन शैतान है आदमी का सबसे शदीद दुश्मन। तुम्हारे रब जानते हैं तुम्हें सबसे अच्छा। उनके इल्म के मुताबिक वो हो सकता है बरसाए तुम्हें रहमत के साथ या हो सकता है वो तुम्हें बदला दें। हमने नहीं भेजा तुम्हें उनका वकील बनने के लिए। तुम्हारे रब हैं सबसे अच्छे जानने वाले हर किसी को आसमानों और ज़मीन में। इस इल्म के मुताबिक मैं हमने कुछ नबियों को तरजीह दी दूसरों पर। मिसाल के तौर पर हमने दिया दाऊद को जबूर। कहो इल्तिजा करो जो कुछ बुतों को तुमने कायम किया है सिवाय उनके। उनके पास कोई ताकत नहीं तुम्हारे तकलीफों को हल्का करने की, ना ही वो उनको रोक सकते हैं। यहाँ तक बुतें जिनको वो इल्तिजा करते हैं तलाश कर रहे हैं रास्ते और जरिए उनके रब की तरफ का। वो दुआ करते हैं उनकी रहमत के लिए और डरते हैं उनके आज़ाब से। यकीनन तुम्हारे रब का आज़ाब है खौफनाक। वहाँ नहीं है कोई कौम जिसे हम फनाह नहीं करेंगे हश्र के दिन से पहले या डालेंगे सख्त आज़ाब उनके ऊपर। यह पहले से लिखा जा चुका है किताब में। हमें जिसने रोका मौजज़ों को भेजने से है ये कि पिछली नस्लों ने ठुकराया उनको। मिसाल के तौर पर हमने तमूद को ऊँट दिखाया एक बड़ा मौजज़ा, लेकिन उन्होंने खता किया उसके खिलाफ। हम भेजते हैं मौजज़े सिर्फ एहतराम डालने के लिए। हमने इत्तला किया तुम्हें कि तुम्हारे रब पूरी तरह काबू करते हैं लोगों को, और हमने जो नज़ारा दिखाया तुम्हें, हमने बनाया एक आजमाइश लोगों के लिए, और वो पेड़ जो कोसा गया है कुरान में, हमने दिखाए उनको पुख्ता सबूतें उनमें एहतराम डालने के लिए, लेकिन इसने सिर्फ बढ़ाया उनकी सरकशी। जब हमने फरिश्तों से कहा आदम के सामने गिरो सजदे में, वो गिर गए सजदे में सिवाय शैतान के। उसने कहा क्या मैं सजदा करूं उसको जिसे आपने पैदा किया मिट्टी से। उसने कहा चूंकि आपने उसे मेरे ऊपर इज्जत दिया है, अगर आप मुझे मोहलत दें हश्र के दिन तक, मैं काबू करूंगा उसके सारी औलादों को सिवाय कुछ के। उन्होंने कहा तो जा तू और जो तेरी पैरवी करें, खत्म होंगे जहन्नम में तेरे बदले की तौर पर एक बराबरी वाला बदला। तू फुसला सकता है उनको तेरी आवाज से, और जमा कर तेरी सारी ताकतों को और तेरे सारे मर्दों को उनके खिलाफ, और साथ दे उनके पैसे और औलाद में, और उनको वादा कर जो कुछ शैतान वादा करता है कुछ नहीं सिवाय एक फरेब के। जहाँ तक मेरे बंदे, तेरे पास कोई ताकत नहीं उनके ऊपर, तुम्हारे रब काफ़ी हैं एक वकील जैसे। तुम्हारे रब हैं वाहिद जो सबब बनते हैं समंदर पर जहाज़ों के तैरने का, ताकि तुम तलाश करो उनकी नियामतों को। वो हैं सबसे रहीम तुम्हारी तरफ। अगर तुम्हें तकलीफ होती है समंदर के बीच में, तुम भूल जाते हो तुम्हारे बुतों को और संजीदगी से सिर्फ उनसे इल्तिजा करते हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें बचाते हैं किनारे को, तुम पलट जाते हो। वाकई इंसान है नाकदरदान। क्या तुमने जमानत दी है कि वो ज़मीन को किनारे पर तुम्हारे निगलने का सबब नहीं बनने देंगे, या ये कि वो नहीं भेजेंगे तुम पर एक आंधी, तब तुम नहीं पाओगे कोई बचाने वाला। क्या तुमने जमानत दी है कि वो तुम्हें नहीं लौटाएंगे समंदर को दूसरी बार, फिर भेजेंगे तुम पर एक तूफान जो डुबो देगा तुम्हें तुम्हारे कुफ्र की वजह से। जब ये होगा हम नहीं देंगे तुम्हें दूसरा मौका। हमने इज्जत दिया है आदम की औलादों को, और मुहैया किया सवारियों से उनको ज़मीन पर और समंदर में। हमने मुहैया किया उनके लिए अच्छी नियामतें, और हमने दिए उनको बड़े फ़ायदे बनिस्बत हमारे कई मखलूकों के। दिन आएगा जब हम हाजिर करेंगे सारे लोगों को इकट्ठा उनके दफ्तर के साथ, जहाँ तक वो जिनको दिया गया है एक दफ्तर नेककारी का, वो पढ़ेंगे उनके दफ्तर को और नहीं झेलेंगे ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी। जहाँ तक वो जो हैं अंधे इस ज़िंदगी में, वो होंगे अंधे अगली ज़िंदगी में उससे भी कहीं बुरे। उन्होंने तुमको तकरीबन फेर दिया आयतों से जो हमने दिया है तुम्हें। वो चाहते थे तुम्हें कुछ और गढ़ने का, ताकि तुम्हें एक दोस्त माने। अगर ये कि हमने तुमको मजबूत नहीं किया होता, तुम तकरीबन झुके उनकी तरफ बस ज़रा सा। अगर तुमने ऐसा किया होता, हमने दुगना किया होता आज़ाब तुम्हारे लिए इस ज़िंदगी में और मरने के बाद, और तुम न पाते किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए हमारे ख़िलाफ़। उन्होंने तकरीबन तुमको ज़मीन से जिला वतन किया तुमसे छुटकारा पाने के लिए, ताकि वो पलट सकें जैसे ही तुम चले जाओ। ये मुसलसल सूरत रही है सारे रसूलों के साथ जिनको हमने भेजा तुमसे पहले, और तुम पाओगे कि हमारा निज़ाम कभी नहीं बदलता। तुम्हें राबता नमाज सलात अदा करनी चाहिए जब सूरज ढलता है उसकी सबसे ऊंची मकाम से दोपहर को, जैसे ही वो बढ़ता है गुरूबे आफ्ताब की तरफ। तुम्हें इसके अलावा फजर को कुरान की तिलावत करनी चाहिए, गवाह होते हैं फजर के वक्त कुरान की तिलावत का। रात के दरमियान तुमको ध्यान करना चाहिए ज़्यादा फ़ायदे के लिए, ताकि तुम्हारे रब उठाए तुमको एक इज्जत वाले दर्जे को, और कहो मेरे रब दाखिल कीजिए मुझको एक इज्जत वाला दाखला, और मुझको विदा होने दीजिए एक इज्जत वाली विदाई, और अता करिए मुझको आपकी तरफ से एक ताकतवर मदद। ऐलान करो सच हावी हुआ है और झूठ गायब हो गया है, झूठ यकीनी तौर पर गायब हो जाएगा। हमने भेजा नीचे कुरान में मरहम और रहमत ईमान वालों के लिए, साथ साथ वो सिर्फ बढ़ाता है बदकारी खतावारों की। जब हम इंसान को बख्शते हैं वो बन जाता है मसरूफ़ और लापरवाह, लेकिन जब मुसीबत मारती है उसे वो नाउम्मीद बन जाता है। कहो हर किसी के आमाल हैं उसके अकीदे के मुताबिक में, और तुम्हारे रब सबसे अच्छा जानते हैं कौन से हैं हिदायत याफ्ता सही राह में। वो तुमसे पूछते हैं नुजूल के बारे में, कहो नुजूल आते हैं मेरे रब की तरफ से, तुम्हें दिया गया इल्म है छोटा। अगर हम चाहें हम वापस ले सकते हैं जो हमने तुमको नाजिल किया है, फिर तुम नहीं पा सकते हिफाजत करने वाला हमारे खिलाफ। लेकिन ये है रहमत तुम्हारे रब की तरफ से, उनकी रहमतें तुम पर रही है बड़ी। कहो अगर सारे इंसाने और सारे जिने जमा हो जाएं इकट्ठे ताकि पैदा करें एक कुरान इस जैसा, वो कभी पैदा नहीं कर सकते इसकी तरह कोई चीज़, चाहे कितनी ही मदद वो दे एक दूसरे को। हमने बयान किए हैं लोगों के लिए इस कुरान में सारे किस्मों की मिसालें, लेकिन ज़्यादातर लोग इसरार करते हैं कुफ्र करने पर। उन्होंने कहा हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम वजह ना बनो ज़मीन से एक झरने के फुट निकलने का, या जब तक तुम खजूर की नखलों और अंगूरों के एक बाग के मालिक न हो जाओ, बहती हुई नहरें दौड़ती हुई उसके बीच, या जब तक तुम वजह न बनो आसमान से अंबारों के हम पर गिरने का जैसा तुम दावा करते हो, या جب تک تم نہ لاؤ اللہ اور فرشتوں کو ہماری نظروں کے سامنے، یا جب تک تم مالک نہ ہو جاؤ ایک شاندار محل کے، یا جب تک تم چڑھ نہ جاؤ آسمان میں۔ اگر تم چڑھ جاؤ تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم نہ لاؤ ایک کتاب جو ہم پڑھ سکیں۔ کہو، تعریف ہو میرے رب کی، کیا میں ایک انسانی رسول سے زیادہ کچھ ہوں؟ جس نے روکا لوگوں کو انسان لانے سے جب ہدایت آئی ان کی طرف سے، ہے ان کا کہنا کیا اللہ نے بھیجا ایک انسان کو ایک رسول جیسا؟ کہو، اگر زمین پر فرشتے بسے ہوتے ہم نے بھیجا ہوتا آسمان سے نیچے ان کی طرف ایک فرشتہ رسول۔ کہو، اللہ کافی ہیں ایک گواہ جیسے تمہارے اور میرے بیچ، وہ ان کی عبادت کرنے والوں سے ہیں پوری طرح واقف دیکھنے والے۔ جس کسی کو اللہ ہدایت دیتے ہیں ہے واقعی ہدایت یافتہ، اور جس کسی کو وہ گمراہ کرتے ہیں تم کبھی نہ پاؤ گے سوائے ان کے کوئی ربوں اور مالکوں جیسا ان کے لیے۔ ہم زبردستی حاضر کریں گے ان کو حشر کے دن پر، اندھا، گونگا اور بہرا، ان کا مقدر ہے جہنم۔ جب بھی وہ ٹھنڈا ہوگا ہم بڑھائیں گے ان کے آگ کو، ایسا ہے ان کا درست عذاب، چونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کہ ہم بدل جائیں ہڈیوں اور ٹکڑوں میں، کیا ہم دوبارہ جلائے جاتے ہیں ایک نئی خلق میں؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکے کہ اللہ جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ہے قابل پیدا کرنے کے ویسی ہی خلقیں؟ انہوں نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے ایک اٹل زندگی کی مدت، اس کے باوجود کافریں اصرار کرتے ہیں کفر کرنے پر۔ اعلان کرو، اگر تم قابو میں رکھتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کو تم نے ان کو روک رکھا ہوتا، ڈرتے ہوئے کہ تم اسے ختم نہ کر دو، انسان ہے بخیل۔ ہم نے مدد کیا موسیٰ کی 9 بڑے معجزوں سے، پوچھو اسرائیل کی اولادوں سے، جب وہ گیا ان کی طرف فرعون نے اس سے کہا میں سمجھتا ہوں تو موسیٰ جادو کیا گیا ہے، اس نے کہا تم اچھے سے جانتے ہو کہ کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا انہیں صاف طور سے آسمانوں اور زمین کے رب کے سوائے، میں سمجھتا ہوں تو فرعون تباہ کیا گیا ہے۔ جب اس نے ان کو تلاش کیا، جیسے ہی پیچھا کیا اس نے ان کا زمین کے باہر، ہم نے اسے ڈبو دیا اکٹھے ان کے جو اس کے ساتھ ہوئے ان ساروں کو، اور ہم نے اسرائیل کی اولادوں کو کہا اس کے بعد جاؤ رہو زمین میں، جب آخری پیشن گوئی گزر جائے گی ہم حاضر کریں گے تم ساروں کو ایک گروہ میں۔ سچائی سے ہم نے اسے نیچے بھیجا اور سچ کے ساتھ وہ نیچے آیا، ہم نے نہیں بھیجا تم کو سوائے ایک خوشخبری لے جانے والے جیسا، ساتھ ساتھ ایک خبردار کرنے والے جیسا، ایک قرآن جو आज़ाद की गई है आहिस्ता से, ताकि तुम उसे पढ़ सको लोगों के लिए एक लंबे मुद्दत तक। हालांकि हमने भेजा उसे नीचे पूरा एक साथ। ऐलान करो उसमें ईमान रखो या उसमें ईमान न रखो। जो कोई इल्म रखते हैं पिछली आसमानी किताबों में, जब वो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है, वो ठोड़ियों के साथ नीचे गिर जाते हैं सजदा करते हुए। वो कहते हैं हमारे रब की तारीफ हो, ये पूरा करता है हमारे रब की पेशिन गोई। वो ठोड़ियों के साथ नीचे गिर जाते हैं सजदा करते और रोते हुए, इसलिए कि वो बढ़ाता है उनका एहतराम। कहो पुकारो उनको अल्लाह, या पुकारो उन्हें सबसे मेहरबान। जो कोई नाम तुम इस्तेमाल करो उनके लिए हैं सबसे अच्छे नाम। तुमको नहीं कहना चाहिए राबता नमाजें सलात, बहुत आवाज़ से ना ही चुपके से, इस्तेमाल करो एक बीच वाली आवाज़। और ऐलान करो अल्लाह की तारीफ हो जिन्होंने कभी नहीं जना है एक बेटा, ना ही वो रखते हैं एक शरीक उनकी बादशाहत में, ना ही उनको ज़रूरत है किसी साथी कमज़ोरी की वजह से, और उनकी लगातार बड़ाई करो।